प्रसूतं देवं कंसचानुरमर्दनं
वसुदेवसुतं देवं
कंसचानुरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु
अजोऽपि सन्नव्ययात्मा
भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्य त्वमायया प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया
यदा यदा हि धर्मस्य
ग्लानिर्भवति भारत
यदा यदा हि धर्मस्य
ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्
मित्राणाय साधु विनाशाय चतुष्कृतां
परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतां
धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे
धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे
जन्म कर्म च मे दिव्य देवं यो वेति तत्त्वतः
जन्म कर्म च मे दिव्य देवं यो वेति तत्त्वतः
तत्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन
नीतरागभय क्रोधामन्मया मामुपाश्रिता
पीतराग भय क्रोध मन्मया मामुपाश्रिताः
ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता
बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागत
देवसुतं देवं कंसचानुरमर्दनं
वसुदेवसुतं देवं कंसचानुरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु
कृष्णं वन्दे जगद्गुरु
కృష్ణం వందే జగద్గురు శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ
శ్రీరామ జయ జయ రామ శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ
శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ
Ram
Jay
Ram
Jay
Jay
నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్ వ్యాసం వశిష్ఠనప్తారం శక్తేః పౌత్రమకల్మషం పరాశరాత్మజం వందే శుకతాతం తపోనిధి. వైవస్వత్ మను సాత్వా మను హే వహాన్ తక్ బాత్ బతా ది. అబ్ ఆనే వాలే వక్త్ కే విషయ మే బతాతే హై. सूर्य के पुत्र सावर्णी जो आठवें मनु है उनकी उत्पत्ति के विषय में सुनाते हैं. सूर्य पुत्र महाभाग सावर्णी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मन्वंतर के स्वामी हुए वो बात सुनाते हैं, प्रसंग सुनाते हैं. बहुत समय पहले स्वारुचिस मन्वंतर में सुरथ नाम के एक राजा थे जो चैत्र वंश में थे. समस्त भूमंडल पर अधिकार था, सारे प्रजा का बड़े धर्म के साथ पालन करते थे. उस समय कोला विध्वंसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए. राजा सुरथ की दंड नीति बड़ी प्रबल थी. उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ. कोला विध्वंसी संख्या में तो कम थे, तो भी राजा सुरथ युद्ध में उनसे परास्त हो गए. कोला विध्वंसी जीत गए. तब वे अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे. अब वो सूरत सारी पृथ्वी से अपना राज्य हट गया, किंतु वहां भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया. सुरथ राजा का बल क्षीण हो गया, इसलिए उनके दुष्ट बलवान और दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राज की सेना और खजाने को वहां से हथिया लिया. जब सेना ही नहीं रही, खजाना ही नहीं रहा, तो सुरथ का प्रभुत्व नष्ट हो गया. इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने से घोड़े पर सवार होकर अकेले घने जंगल में चले गए. वहां उनको एक ब्राह्मण देवता दिखाई दिए. उनका नाम था मेधा. मेधा मुनि का आश्रम देखा. वहां कितने ही हिंसक जीव रहते थे और बड़े शांत भाव से रहते थे. चाहे हिरण और सिंह हो, चाहे दूसरे सिंह प्राणी हो, चाहे वो हो, उस मुनि की तपस्या के प्रभाव से वहां प्राणियों के अंदर भी हिंसा की भावना नहीं थी। फिर उन मुनि के बहुत से शिष्य थे, वो वहां वेदाध्ययन करके आश्रम की शोभा बढ़ा रहे थे। मुनि को पता चला कि हमारे आश्रम में सुरथ नाम के राजा आए हैं, तो उनका सत्कार किया। तो वहां सुरथ ने कहा कि मैं कुछ दिन आपके आश्रम में ही रहना चाहता हूं। तो वह कई दिन तक उनकी आज्ञा से रहने लगे। अब इधर इनको अपने ममता की प्रवृत्ति के कारण से विचार आने लगा, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था वह नगर आज मेरे से छीन लिया गया है और मैं भी उसको छोड़ करके आ गया हूं। पता नहीं मेरे दुराचारी मंत्री या भृत्यगण धर्म पूर्वक उसका पालन करते भी हैं कि नहीं, जो सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा की ओर देखते थे, मेरे धन से और मेरे भोजन से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, अब ये सब मेरे से छूटकर दूसरे राजाओं के पीछे चलते होंगे। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा यह खजाना खाली हो जाएगा। ऐसी ऐसी बातें वो सुरथ सोचते रहते थे। एक दिन वहां मेधा ऋषि के आश्रम के पास एक वैश्य को देखा और उस वैश्य से पूछा कि भाई तुम कौन हो, तुम्हारे इस जंगल में आने का कारण क्या है, तुम बड़े उदास लग रहे हो, बड़े शोक में डूबे हुए से लगते हो, ऐसा अनुमान लगता है। अनमने से कैसे हो? राजा सुरथ ने बड़े प्रेम से ये बात कही तो उस वेश्य ने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा, महाराज मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वेश्य हूं, मेरा नाम समाधि है, मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया, अब इस समय मैं धन स्त्री और पुत्र से वंचित हूं, मेरे विश्वास के योग्य भाई बंधुओं ने ही मेरा धन लेकर मुझसे दूर कर दिया, इसलिए मैं दुखी होकर वन में चला आया हूं। यहां रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्र, मेरी स्त्री, मेरे परिवार के लोग कुशल भी हैं या नहीं है। इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं अथवा कोई उनको कष्ट भी दे रहा है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हैं कि कैसे, कुछ पता नहीं है। राजा ने देखा कि इसकी और मेरी तो एक जैसी परिस्थिति मालूम दे रही है। फिर भी राजा ने आगे पूछा, भाई जिन लोभी स्त्री पुत्रों ने धन के कारण से तुमको घर से निकाल ही दिया, फिर उनके प्रति इतना स्नेह क्यों हो रहा है, ऐसी ममता क्यों हो रही है, तुम उनके विषय में इतनी चिंता क्यों करते हो, जब तुमको निकाल ही दिया तो छोड़ो, क्यों चिंता करते हो। वैश्य ने कहा एवं एतत् यथा प्राह है, आप जो कहते हैं वो बिल्कुल ठीक है, परंतु मेरे मन में कई प्रकार की बातें आती हैं। यह मन निष्ठुरता नहीं धारण करता है, थोड़ा कठोर होना चाहिए, कठोर बन नहीं रहा है, उनके प्रति कोमल हो जाता है। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, धन के लोभ में पड़कर पति के प्रति प्रेम, और धन के ही लोभ में पड़कर आत्मी जनों के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे मुझे घर से निकाल दिया है, उनके प्रति न जाने क्यों मेरा हृदय इतना स्नेहिल हो रहा है। बात तो आप कहते हो वही बात है कि अब उनसे स्नेह रखने का कोई अर्थ नहीं, पर जाने क्यों मेरा मन स्नेह में डूब रहा है। ये गुणहीन बंधुओं के प्रति जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है, ये क्या है, इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। बैठे बैठे कभी मुझे लंबी लंबी सांसें आती हैं, मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है, तो भी मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता, कठोर नहीं हो पाता, क्या करूं। आपको कोई उपाय है तो, जानकारी है तो बताओ। मार्कंडेय जी कहने लगे हे क्रौष्टु के, तदनंतर राजाओं में श्रेष्ठ सुरथ और वह वेश्य जिसका नाम समाधि था, दोनों मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ न्यायानुकूल विनयपूर्ण बर्ताव करके बैठ गए और वेश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप प्रारंभ किया। राजा ने कहा हे ऋषि प्रवर, मैं आपसे कुछ बात पूछना चाहता हूं। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण यह वह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मैं जाने क्यों मेरी ममता हो रही है। राज्य के अंग है, सेना है, कोष है, मंत्री है, सेवक है, ये सब राजा के अंग होते हैं, इनमें मेरी ममता हो रही है। अब वो मेरे हाथ में नहीं है, मेरे पास नहीं है, दूसरों ने छीन लिया है, ये जानते हुए भी ये मेरा नहीं है, ये अज्ञानी की भांति मुझे क्यों दुख होता है, इसका कारण नहीं समझ पाया हूं। और जो मेरी परिस्थिति है वो इस वेश्य की परिस्थिति है, यह वेश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया है, इसके भी पुत्र है, स्त्री है, सेवक है, सब ने इसको छोड़ दिया, स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया, तो भी इसके मन में उनके प्रति बार बार स्नेह भाव हो रहा है। हम दोनों एक ही दुख से दुखी हो रहे हैं। हम जान रहे हैं कि ये प्रत्यक्ष दुख है, फिर भी न जाने उनके प्रति क्यों ममता पैदा होती है, उनसे मिलने की इच्छा होती है, उनसे बात करने की इच्छा होती है, उनसे प्रेम करने की इच्छा होती है। हम दोनों खूब समझदारी से काम करते हैं, तभी ये मोह ऐसा पैदा हो गया, क्या करें। विवेक शून्य पुरुष के भांति मुझ में और इस वैश्य में ये मूढ़ता दिखाई दे रही है, क्या करना चाहिए। मार्कंडेय जी बोलिए, मार्कंडेय जी कहते हैं कि वो मेधा ऋषि बोले, देखो महाभाग ध्यान पूर्वक सुनो, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है, इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। देखो कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते तो दूसरे रात में नहीं देखते। कुछ ऐसे जीव हैं जो दिन और रात्रि में बराबर देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी होती है जैसी उन पशु पक्षियों की होती है, तथा जैसी मनुष्यों की होती है वैसी उन पशु पक्षियों की होती है। यह तथा अन्य बातें प्राय दोनों में समान है। समझ होने पर भी इन पक्षियों को देखो, वे स्वयं भूख से पीड़ित होते वे भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। हे राजन, क्या तुम यह नहीं देखते कि यह मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभ के कारण अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं? यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति अर्थात जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाली भगवती महामाया के प्रभाव के द्वारा ममतामय भंवर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिरते चले जा रहे। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जो तुम्हारी दशा हो रही वो माया के कारण से हो रही है। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूप जो भगवती महामाया है, उन्हीं से ये सारा जगत मोहित हो गया है। वे भगवती महामाया ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। वे ही संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती है, तथा वे ही प्रसन्न होकर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती है। वे ही पराविद्या संसार बंधन और मोक्ष की हेतु भूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी है ये महामाया। राजा ने कहा, भगवान जिन्हें आप महामाया कहते हैं वो देवी है कौन? उनका आविर्भाव कैसे हुआ? उनके चरित्र क्या क्या है? हे ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ मेधा ऋषि, उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, जैसे उनका प्रादुर्भाव हुआ हो, वो सब मैं आपसे सुनना चाहता हूं। ऋषि बोले, देखो राजन, वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा है, उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है, तथापि उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है। वो मुझसे सुनो, यद्यपि वे नित्य और अजन्मा है, तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती है। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एक कारणों में निमग्न रहता है, उस समय भगवान विष्णु शेषनाग की शैया बिछाकर योग निद्रा से आश्रय ले रहे थे। उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, एक का नाम मधु और एक का नाम कैटब था। ये दोनों कान से पैदा होकर सीधे ब्रह्मा जी का वध करने लगे। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा ने जब उन दोनों असुरों को अपनी ओर आया देखा और इधर भगवान को सोते हुए देखा तो उनका एकाग्र चित्त होकर भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन किया, स्तुति करी। जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन करने वाली भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है, उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, त्वाम स्वाहा त्वम स्वाहा त्वम सुधा त्वम ही वशत्कार स्वरात्मिका, सुधा त्वम अक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्य विशेषतः आप ही स्वाहु, आप ही स्वाहा हो, आप ही स्वधा हो, आप ही वशत्कार हो और आप ही जीवनदायिनी सुधा हो, आप ही अर्धमात्रा ए ऊ मैं, इन तीनों मात्राओं के रूप में आप ही हो। तीनों मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा अर्धमात्रा है, ओम लगाते हैं ओम, उसमें बिंदु रूपा भी आप ही हो, आप ही संध्या हो, आप ही गायत्री हो, जगत की उत्पत्ति के समय आप ही सृष्टि बनती हो, पालन के समय आप स्थिति बनती हो और कल्प के अंत में आप ही संहार करने वाली हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी आप ही हो, आप ही ईश्वरी हो, आप ही रीम हो, आप ही बोध स्वरूपा हो, आप खड्ग धारिणी हो, शूल धारिणी हो, शंख चक्र गदा पद्म धारिणी हो, बाण भुसुंडी परिघ ये सब आप ही के अस्त्र हैं। कहीं भी सत असत रूप जो कुछ वस्तुएं हैं सब आपकी शक्तियां हैं। ऐसी स्थिति में स्तुति आपकी क्या की जा सकती है? जो इस जगत की सृष्टि पालन और संहार करने की शक्तियां सब आप में हैं। मुझको, भगवान शंकर को और विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें हो सकती है? तुम तो अपने इस उदार भाव से प्रशंसित हो। हे महामाये, ये दोनों दुर्धर्ष असुर और ये दोनों दुर्धर्ष असुर मधु और कैटभ, इनको मोह में डाल दो और भगवान विष्णु को शीघ्र जगा दो, साथ ही उनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की भावना पैदा कर दो। ऋषि कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने वहां मधु और कैटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा को इस प्रकार स्तुति करके प्रसन्न किया, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय, वक्षस्थल से निकलकर अजन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि में समक्ष आ गई, खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एकार्णव के जल में शेष नाग की सैया से जाग उठे और जागते ही उन्होंने इन दोनों असुरों को देखा। मधु और कैटभ, इन्होंने भगवान विष्णु को देखा और वे ब्रह्मा जी को खाने के लिए दौड़े। तब भगवान ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था, इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वरदान मांगो। तब भगवान ने प्रसन्नता से कहा, अच्छा, तो यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो तुम मेरे हाथ से मर जाओ। बोलो ये वरदान मांगता हूं, देखो दोगे? बस और दूसरा कोई वर हमको लेना नहीं। अब वो धोखे में आ गए, एक तरफ तो वरदान दे दिया, एक तरफ ये बात हो गई, अब क्या करें? उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा। तब उन्होंने भगवान के सामने एक और कपट किया, आपका वरदान तो हम दे देंगे परंतु जहां जल नहीं हो, ऐसी कोई सूखी जगह हो वहां पर तुम हमको मार सकते हो, और जगह नहीं। अब उन्होंने कहा सब जगह समुद्री समुद्र है, तो पृथ्वी तो है नहीं, कैसे मारेंगे हमको? तो मार्कंडेय जी ने कहा, भगवान ने कहा अच्छी बात, तथास्तु। शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांग पर रख लिया और चक्र से काट दिया। इस प्रकार वे दोनों महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन सुनाता हूं। अब उसको तुम सुनो। ये मधुकैटभ वध नाम का पहला अध्याय पूरा होता है। अब उसकी और महिमा क्या है देवी की, वो आगे बताएंगे। मार्कंडेय पुराणी इसी प्रसंग के लिए है।